राजवीर का पलटवार। आहान के सवाल करने पर आकाश ने गहरी सांस लेकर कहा, बात ही कुछ ऐसी है, आइए मेरे साथ। ये बोलकर वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में चले गए, जहां उनकी मर्जी के बिना किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। फिलहाल वहां जाकर आकाश ने सब लोगों को एक नज़र देखा और बोलना शुरू किया, अबीर सिंह राठौर बर्बाद हो चुका है। अब आगे, अब जैसे ही अचानक आकाश ने ये कहा, वैसे ही सब लोग एकदम से दंग रह गए। अचानक किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार आकाश कहना क्या चाहता है। तभी आस्था आकाश को कन्फ्यूज होकर देखते हुए पूछती है, आकाश भैया, साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? वहीं सुमित भी इस बात पर थोड़ा गंभीर होकर फौरन बोल पड़ा, हाँ आकाश, ऐसा क्या हुआ जो अबीर सिंह राठौर बर्बाद हो चुका है? हम समझ नहीं पा रहे आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी आकाश ने गहरी सांस ली, फिर सीधा और सच्चा जवाब दिया, अबीर की जितनी भी प्रॉपर्टी इस शहर में और बाकी दूसरे शहरों में थी, वो सारी प्रॉपर्टी अब किसी और के नाम हो चुकी है और किसी अनजान शख्स ने अबीर को पूरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया है। आकाश के कहे शब्दों को सुनकर सबके एक्सप्रेशन फौरन बदलते चले गए, मानो जैसे उसकी इस बात पर सभी को जैसे झटका सा लगा हो कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए। वहीं आस्था ने भी दंग होकर फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तब उसे याद आया, आज अबीर अरमान के सामने उसके साथ ऑफिस में कॉफ़ी पी रहा था, तो हो सकता है अरमान को ये बात बहुत बुरी लगी हो और इसी वजह से उसने ही अबीर को बर्बाद कर दिया हो। अब जैसे ही आस्था ने सबके सामने ये अंदेशा जाहिर किया, तो आकाश तुरंत उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं आस्था, अरमान ने अबीर को बैंकरप्ट नहीं किया है, ये सब किसी और शख्स ने किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर जिंदल है। राजवीर का नाम सुनकर एक पल में आस्था की आंखें कठोर हो गईं और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो एकदम से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं, राजवीर जिंदल? तब आकाश ने लाचारी से हाँ में सिर हिला दिया। उसने तुरंत सबको एक एक करके सारी बातों के बारे में बताना शुरू किया, हाँ हमें राजवीर जिंदल की एक टिप मिली थी कि वो नाइजीरिया में है, और जैसे ही हमने अपने आदमियों को वहां सर्च करने के लिए भेजा, तब हमें पता चला कि राजवीर जिंदल वहां से गायब हो चुका है और अब वो वापस इस शहर में लौट आया है, और इस शहर में आकर उसने सबसे पहले अबीर सिंह राठौर को अपना निशाना बनाया और उसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब अबीर सिंह राठौर पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। आकाश के मुंह से निकले उन शब्दों ने सभी को सदमे में डाल दिया। आस्था को अब समझ आया कि उस वक्त अबीर इतनी हड़बड़ी में क्यों ऑफिस से बाहर निकला था। तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए अविश्वास से बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर सच में राजवीर जिंदल इस शहर में वापस आ गया है और अगर उसने ही अबीर को निशाना बनाया है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसका अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि हम लोग यानी सिंघानिया परिवार होगा। ये कहते हुए ध्रुव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इस वक्त सभी के चेहरों पर चिंता और परेशानी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आसपास का माहौल एकदम टेंशन वाला हो गया था। और तभी आस्था अपने नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, लेकिन हमें अच्छी तरह पता है कि हमें राजवीर को कैसे संभालना है, बस एक बार अरमान जी की यादें वापस आ जाएं, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी अब तक वंशिका प्रोफेसर साहब से एंटीडोट लेकर आ गई होगी, बस हमें वो एंटीडोट मिस्टर सिंघानिया को देना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, वैसे ही ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो मायूसी शक्ल बनाकर बोला, नहीं भाभी, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ध्रुव की ये बात सुनते ही आस्था की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वो थोड़ा घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं ध्रुव भैया? तब ध्रुव और आकाश ने एक दूसरे को अफसोस भरी नजरों से देखा। इसके बाद ध्रुव ने प्रोफेसर पर हुए हमले और एंटीडोट गायब होने की बात आस्था को बता दी। ध्रुव के शब्द किसी धमाके की तरह थे, जिसे सुनकर आस्था हक्की बक्की रह गई थी। एक पल के लिए जैसे वो जमसी गई थी, उसके दिल और दिमाग पर अविश्वास की लहर दौड़ गई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो, जिसे वो बिखरने से बचाना चाहती थी। वो अपने भीतर की बेबसी और गुस्से को अपने चेहरे पर लाने से रोक नहीं पा रही थी। माहौल में एक चुभने वाला सन्नाटा छा गया था। वहां खड़ा हर एक शख्स हैरत में पड़ गया था। तभी आहान सीरियसनेस के साथ बोला, यानी इसका मतलब साफ है, राजवीर जिंदल पूरी तैयारी के साथ इस शहर में आया है और आते ही उसने सबसे पहले अबीर सिंह राठौर को बर्बाद कर दिया और हमारा एंटीडोट भी गायब करवा दिया। सुमित भी इस बात पर हामी भरते हुए आगे बोला, हाँ शायद बहुत पहले से वो हमारे हर एक मूव पर नजर रख रहा होगा और अब न जाने कौन सा हथियार कब कहाँ से इस्तेमाल करे। एक बात और, आकाश ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और एकदम से कहा, राजवीर जिंदल इस खेल में अकेला नहीं है बल्कि कोई और भी उसके साथ इस खेल में शामिल है, और वो कौन है ये बात हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द हमारे आदमी इसका भी पता लगा लेंगे। आकाश की इस बात ने सबको और परेशान कर दिया। सच कहा जाए तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजवीर जिंदल इस तरह वापस उनकी जिंदगी में लौट आएगा। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया हॉस्पिटल से सीधा अपने ऑफिस की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि ज्यादा देर हॉस्पिटल में रुककर वो अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करना चाहता था, ये उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता था। वैसे भी आज शाम उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसने संजना को मैसेज कर दिया था कि वो केवल आधे घंटे में वहां पहुंच रहा है और वो मीटिंग कैंसिल ना करे। संजना जो पहले से ही चिढ़ी हुई बैठी थी,
लेकिन जैसे ही उसने सुना कि अरमान मीटिंग अटेंड करने वापस ऑफिस आ रहा है तो वो एकदम से खुश हो गई और फटाफट मीटिंग की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल रूम में आहान अभी तक चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसने अभी तक अपनी बेटी होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, हालांकि रश्मि ने उस छोटी सी गुड़िया को उसकी ही गोद में दिया हुआ था। वो बस बार बार उसे देखे जा रहा था। रश्मि को अचानक एहसास हुआ कि जब से बच्ची हुई है आहान ने ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है, जबकि इससे पहले वो बार बार सवालों की बौछार करके उसे परेशान कर रहा था। रश्मि दीदी, मेरा बच्चा कब आएगा? रश्मि दीदी, मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन जब से उसकी बच्ची का जन्म हुआ है तब से उसने बच्ची के लिए कोई शब्द नहीं कहे। सभी लोग अपनी अपनी बातों में मग्न थे, इसलिए किसी ने आहान की खामोशी को नोटिस नहीं किया था। पर अब जब रश्मि को एकदम से एहसास हुआ तो वो आहान से ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। आहान, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब से तुम्हारी बेटी इस दुनिया में आई है तब से तुमने कोई खुशी या एक्साइटमेंट जाहिर नहीं की है, जबकि अभी कुछ देर पहले तक तो तुम मुझे कितना परेशान कर रहे थे। अब जैसे ही रश्मि ने यह सवाल किया तो आहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बच्ची को आराम से रौनक के पास लेटाकर वहां से चुपचाप बाहर निकल गया। रश्मि को उसका बर्ताव देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने दिल पर नहीं लिया। रौनक तो पहले से ही आहान को नम आंखों से घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की परेशानी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक नानी माँ आश्चर्य से बोल पड़ी, ये आहान बिटवा को क्या हुआ है? आज तक उन्होंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, वो इतना उदास क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बात पर रौनक ने नजरें नीचे कर ली और अपनी आंखों का दर्द छुपाते हुए बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे क्या हुआ है। उसे बेटा चाहिए था रेसर और बॉक्सर बनाने के लिए, लेकिन उसकी बेटी हुई है और शायद इसलिए वो इतना अजीब बर्ताव कर रहा है।
जैसे ही रौनक ने ये कहा वैसे ही दादाजी, नानी माँ, मारिया, टाइगर और बाकी सबके चेहरे पर अविश्वास के भाव झलकने लगे, क्योंकि जितना उन्होंने आहान को जाना था, जितना वो उसके साथ रहे हैं, ये बात सोचना भी पॉसिबल नहीं था कि वो बेटा बेटी में अंतर कर सकता है। सब लोग रौनक की इस बात पर हद से ज्यादा शौक थे। आहान का स्वभाव ऐसा था, वो हमेशा हंसता खेलता, चुलबुला और सबका मन बहलाने वाला व्यक्ति था, तो ऐसे व्यक्ति से कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस तरह बेटे और बेटी दोनों में फर्क कर सकता है। वहां के माहौल में एक अजीब सा तनाव था इस समय। सभी उलझन में थे, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, क्योंकि आहान की खामोशी से सबको तगड़ा झटका लगा था। जल्द ही रौनक की दबी हुई सिसकियों की आवाज सबके कानों तक पहुंची, जिसने बाकी सदस्यों के दिल में ढेर सारी भावनाएं जगा दी। रश्मि ने रौनक के कंधे पर हाथ रख के उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। नर्वसनेस रौनक के चेहरे के कोने कोने पर पसरी हुई थी। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की आंखों के आंसू घूमने लगे, वही डर, वही दर्द जो अब उसकी अपनी आंखों में आने वाले थे। इतना सोचकर रौनक के मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसने अपनी बेटी के हाथों को प्यार से थामकर मन ही मन तय कर लिया, अगर आहान उसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाएगी। जैसे उसकी माँ ने अकेले रहकर उसे पाला था, वो भी अपनी बेटी को अकेली पाल लेगी। ये सब सोचकर रौनक का दिल भर आया। वहीं दूसरी ओर आस्था की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से एंटीडोट खो जाएगा और राजवीर जिंदल भी अचानक इस शहर में आ जाएगा। आस्था को शांत कराने के बाद आकाश, सुमित और ध्रुव जल्दी से उसे आगे की सिचुएशन समझाते हुए बोले, भाभी, अगर राजवीर जिंदल ने इस शहर में आकर ये सब ड्रामा किया है तो इसका मतलब साफ है कि उसका अगला टारगेट अरमान भाई ही होंगे। हमें अरमान भाई पर 24 घंटे नज़र रखनी होगी। इस बीच ये भी हो सकता है कि राजवीर जिंदल अरमान भाई से मिलने की कोशिश करे, और वैसे भी अरमान भाई अपनी यादें खो चुके हैं। उनकी पुरानी यादों में राजवीर जिंदल उनके गुरु हैं, जिन्हें वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते हैं, और वो राजवीर जिंदल जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए हमें उन दोनों की मुलाकात होने से रोकनी होगी। जितना हो सके हमें उन्हें एक दूसरे से दूर रखना होगा। कहीं ना कहीं ध्रुव अपना अंदेशा जाहिर कर रहा था कि आगे की इससे भी बुरी सिचुएशन होने की संभावना है। आस्था ने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद के इमोशंस को संभाला और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप फिक्र मत करिए, बस ये पता लगाइए कि राजवीर जिंदल इस वक्त कहाँ रह रहा है। मुझे चाहे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े, मैं अपनी जान खतरे में डालूंगी, लेकिन अपने पति के लिए मैं वो एंटीडोट जरूर लेकर आऊंगी। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।